एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उपन्यास की जो किसी पहेली की तरह खुलता है, परत दर परत।
हाँ,
मार्गरेट एटवुड की द ब्लाइंड असैसिन।
एटवुड द हैंडमेड्स टेल वाली।
बिल्कुल, कनाडा की जानी मानी लेखिका हैं और उनका अंदाज, वो इतिहास, भविष्य की कल्पनाएं, इंसानी मन की गहराइयां, सबको एक साथ बुन देती हैं।
सही कहा, उनका लिखने का तरीका बहुत खास है।
और द ब्लाइंड असैसिन, ये 2000 में आया और आते ही बुकर प्राइज जीत गया।
हाँ, ये उनकी सबसे पेचीदा और महत्वाकांक्षी किताबों में से एक मानी जाती है।
इसमें सब कुछ है, इतिहास है, थोड़ा गॉथिक रोमांस का पुट है, रहस्य है,
और वो कहानी के अंदर कहानी वाला मामला भी, मेटाफिक्शन।
हाँ बिल्कुल, ये हमें ले जाता है 20वीं सदी के कनाडा में। वो दौर महामंदी, विश्व युद्ध, काफी उथल पुथल वाला समय था। तो आज हम इसी उपन्यास की क्या कहते हैं गांठे खोलेंगे, इसके किरदारों के उलझे हुए सफर को समझेंगे
और देखेंगे कि कैसे यादें, धोखा और कहानियां, कैसे ये सब जिंदगी को शक्ल देते हैं।
खासकर इसकी कहानी कहने की जो अनोखी बनावट है उस पर गौर करेंगे।
बिल्कुल, और इस उपन्यास की शुरुआत ही क्या कहने एक ऐसी लाइन से होती है जो दिमाग में अटक जाती है।
कौन सी?
जंग खत्म होने के 10 दिन बाद मेरी बहन लौरा ने गाड़ी पुल से नीचे गिरा दी।
एक वाक्य में कितना कुछ ड्रामा, रहस्य
है ना? और ये आवाज है 82 साल की आयरिस चेज ग्रिफिन की, कहानी की मुख्य सूत्रधार।
अच्छा,
वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है और अपने परिवार का वो छुपा हुआ इतिहास लिखने बैठी हैं, जो दुनिया की नजरों से हमेशा ओझल रहा।
तो यहीं से वो पढ़ते खुलना शुरू होती हैं।
हाँ बिल्कुल, एक तो है आयरिस की आज की डायरी, जिसमें वो अपने बीते कल को याद कर रही हैं। फिर बीच बीच में आते हैं अखबारों के टुकड़े, चेज और ग्रिफिन जैसे अमीर घरानों के बनने बिगड़ने की कहानी कहते हुए।
अच्छा, ये बैकग्राउंड देते हैं।
हाँ, और सबसे दिलचस्प है कहानी के अंदर की कहानी, एक और उपन्यास
जिसका नाम भी द ब्लाइंड असैसिन है।
वही, जिसे आयरिस की बहन लौरा चेज के नाम से उसकी मौत के बाद छापा गया और वो तो रातों रात मशहूर हो गया, कल्ट क्लासिक बन गया।
अरे वाह, तो गुत्थी यहीं उलझती है।
बिल्कुल, कि लौरा के साथ असल में हुआ क्या था, आयरिस की यादों और लौरा के नाम से छपे इस उपन्यास में क्या रिश्ता है?
क्या लौरा ही इसकी असली लेखिका थी या कोई और?
और ये उपन्यास अपने अंदर कौन से राज छुपाए बैठा है, ये सवाल पाठक को कहानी के साथ बांधे लेते हैं।
सही कहा, ये सवाल ही हैं जो आगे खींचते हैं। तो किरदारों से मिलते हैं, उनके सफर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आयरिस,
जो कहानी सुना भी रही है और कहानी का हिस्सा भी है।
हाँ, और शायद सबसे अहम हिस्सा। ऐसा लगता है ना जैसे उसकी पूरी जिंदगी दूसरों की कही कहानियों के साये में गुजरी है।
बिल्कुल, शुरुआत में वो काफी प्रैक्टिकल सी लगती है, हालात से समझौता करने वाली, परिवार को बचाने के लिए अपनी ख्वाहिशें कुर्बान कर देती हैं।
उसका सफर एक तरह से दम घुटने जैसा लगता है, एक बेमेल शादी जिसमें प्यार नहीं, बस एक ठंडा फन है, ज़हनी जुल्म।
वो अपनी ही जिंदगी की खामोश तमाशाई बन जाती है ना?
हाँ, लेकिन बुढ़ापे में जब वो ये सब लिख रही है तब वो बदलती है।
अच्छा, कैसे?
वो उस चुपचाप सहने वाली पत्नी के खोल से बाहर निकलती है, सच का सामना करती है। लिखना उसके लिए जैसे जीने का जरिया बन जाता है,
और शायद हिसाब बराबर करने का भी।
हाँ शायद, अपने ऊपर हुए अन्याय का हिसाब। वो एक बेजुबान चीज से अपने किस्से की मालिक बनती है।
और दूसरी तरफ है लौरा चेज,
कहानी का रहस्यमयी दिल।
हाँ, जो शुरू होने से पहले ही बुझ चुका है। हम उसे आयरिस की यादों से ही जानते हैं, एक नाजुक सी, थोड़ी अजीब,
लेकिन जिसके अंदर सच और झूठ को लेकर एक अजीब सी सख्ती है।
बिल्कुल, वो दुनिया के बनाए कायदों और झूठ के साथ चल नहीं पाती, जो शायद आयरिस आसानी से कर लेती है। उसका सफर बड़ा दर्दनाक है। वो ताकतवर मर्द रिचर्ड ग्रिफिन के हाथों का खिलौना बनती है और अपनी बहन आयरिस भी उसे गलत समझती है।
लेकिन कहानी के आखिर में पता चलता है,
हाँ, कि लौरा की मौत महज पागलपन या कमजोरी नहीं थी, वो एक सोचा समझा, दिल दहला देने वाला फैसला था।
क्यों?
अपनी बहन के राज और एक सच्चाई को बचाने के लिए दी गई कुर्बानी।
ओह, तो वो एक बेचारी शिकार से,
कहानी की खामोश नैतिक रीढ़ बन जाती है, उसकी मौत एक सवाल छोड़ जाती है।
और इस पूरी त्रासदी के पीछे जो ताकत है वो है रिचर्ड ग्रिफिन। कहानी का विलन
बाहर से बड़ा आकर्षक लेकिन अंदर से
बेरहम।
हाँ, वो उस वक्त के ताकतवर उद्योगपति और मर्दों की बनाई दुनिया का प्रतीक है। उसे सिर्फ ताकत चाहिए, कंट्रोल चाहिए, अपनी विरासत की फिक्र है।
लोग उसकी नजर में जैसे इस्तेमाल की चीजें, आयरिस, लॉरा, सब।
बिल्कुल, वो आयरिस से शादी करता है ताकि उसे समाज में इज्जत मिले और उसके परिवार की फैक्ट्री।
फिर वो आयरिस को दुनिया से काट देता है, उसकी हिम्मत तोड़ देता है, मनोवैज्ञानिक क्रूरता।
हाँ, और इसमें उसकी बहन विनिफ्रेड भी पूरा साथ देती है।
रिचर्ड कहानी में ऊपर उठता है, गिरता भी है, पर बदलता नहीं। वो जुल्म की एक पक्की तस्वीर बना रहता है।
और इन सब के बीच एक चिंगारी की तरह आता है एलेक्स थॉमस,
कहानी का रोमांटिक और विचारों का तूफान लाने वाला किरदार।
हाँ, घर से भागा हुआ नौजवान, समाजवादी सोच वाला, सस्ती साइंस फिक्शन कहानियां लिखता है, फैक्ट्री मजदूरों को जगाने वाला।
वो चेज और ग्रिफिन की ठंडी नपीतुली दुनिया से एकदम अलग।
बिल्कुल, उसमें जोश है, दिमाग में बातें हैं, सियासत में यकीन है और समाज के बनाए नियमों को तोड़ने की हिम्मत।
आयरिस के साथ उसका रिश्ता वही उपन्यास का छुपा हुआ धड़कता हुआ दिल है।
हाँ, वही आयरिस को अन्हे कातिल यानी ब्लाइंड असैसिन की कहानी सुनाता है, जो असल में उनके छुप छुपाकर चलने वाले प्यार का एक इशारा, एक कोड बन जाती है।
एलेक्स अपनी सोच के लिए जीता है और आखिरकार जंग का शिकार हो जाता है।
हाँ, आयरिस के लिए वो एक ऐसी जिंदगी का ख्वाब था जो वो जी नहीं पाई। आज़ादी और प्यार की एक छोटी मगर तेज लौ। कहानी में उसका वजूद भले ही कम वक्त के लिए हो, पर उसका असर बहुत गहरा है।
तो कहानी बढ़ती कैसे है? आपने कहा तीन धागे हैं?
हाँ, तीन अलग अलग ट्रैक हैं जो धीरे धीरे आपस में उलझते जाते हैं।
और यही बनावट इसे खास बनाती है, पाठक को चौकन्ना रखती है।
पहला धागा है बूढ़ी आयरिस की आज की कहानी, जो वो 1990s के दशक में लिख रही है। बीमार आयरिस छुपकर अपनी पोती सबरीना के लिए अपनी जिंदगी का सच लिख रही है।
हाँ, और इस हिस्से में बुढ़ापे, याददाश्त के धोखों और आज की दुनिया पर उसकी तीखी, कभी कभी मजाहिया टिप्पणियां भी हैं।
और कहानी सुनाने वाले के तौर पर आयरिस का ये आज का नजरिया बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यहीं से वो तय करती है कि हमें कब, क्या और कितना पता चलेगा। वो रहस्य बनाती है और वादा करती है कि अतीत का सच सामने लाएगी।
ये हमें उसके आज के अकेलेपन और बीते कल के बोझ का एहसास कराता है।
दूसरा और सबसे बड़ा धागा है आयरिस के अतीत की कहानी, जो वो वक्त के हिसाब से सुनाती है।
कहाँ से शुरू होती है?
पोर्ट टिकोंडोरोगा नाम के शहर में उसके अमीर लेकिन जज्बाती तौर पर सूने बचपन से।
माँ गुजर चुकी हैं, पिता जो पहले विश्व युद्ध में लड़े थे भले आदमी हैं पर दुनियादारी में कच्चे हैं।
और अपनी बटन की फैक्ट्री को महामंदी में बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
हाँ, फिर आता है एलेक्स थॉमस। दोनों बहनें उसकी तरफ खिंचती हैं लेकिन आयरिस का ही उसके साथ एक छुपावा गहरा रिश्ता बनता है।
लेकिन परिवार को बचाने के लिए,
हाँ, आयरिस की शादी उससे उम्र में बड़े अमीर उद्योगपति रिचर्ड ग्रिफिन से कर दी जाती है।
वो टोरंटो चली जाती है, आलीशान घर, लेकिन घुटन और अकेलापन।
और रिचर्ड की दबंग बहन विनिफ्रेड उस पर नजर रखती है। उसकी जिंदगी में सुकून के पल सिर्फ तब आते हैं जब वो छुपकर एलेक्स से मिलती है।
हाँ, और इन्हीं मुलाकातों में एलेक्स उसे ज़िक्रॉन ग्रह के अंधे कातिल की कहानी सुनाता है, जिसे आयरिस लिखती जाती है।
कहानी तब और उलझती है जब
पता चलता है कि रिचर्ड ने लॉरा का शोषण किया है। लॉरा गर्भवती हो जाती है और बदनामी से बचने के लिए उसे पागलखाने भेज दिया जाता है। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, एलेक्स फौज में चला जाता है और बाद में उसकी मौत की खबर आती है।
और जंग खत्म होते ही
लॉरा पागलखाने से भागती है और पुल से कूद जाती है, वही हादसा जिससे उपन्यास शुरू हुआ था।
इसके बाद रिचर्ड अपनी बेटी एमी को भी आयरिस से छीन लेता है
और आयरिस बिल्कुल अकेली रह जाती है।
ये घटनाओं का एक बहुत दर्दनाक सिलसिला है। और इसे सिर्फ एक परिवार की कहानी समझना अधूरा होगा। एटवुड बड़ी खूबी से इन निजी हादसों को उस दौर के बड़े ऐतिहासिक पसमंजर से जोड़ती हैं, महामंदी, दूसरा विश्व युद्ध।
बिल्कुल, आयरिस की कुर्बानी, रिचर्ड का जुल्म, एलेक्स का मजदूरों के हक की लड़ाई, ये सब उस जमाने की बड़ी ताकतों को दिखाते हैं।
आयरिस की शादी सिर्फ एक निजी फैसला नहीं, आर्थिक मजबूरी का नतीजा है। लॉरा को पागलखाने भेजना वो औरतों को काबू में रखने के सामाजिक तरीकों का हिस्सा है।
सही कहा। एलेक्स की कहानी प्यार के साथ साथ सियासी जज्बे और उसके खतरों की भी कहानी है।
और तीसरा धागा, वो उपन्यास के अंदर का उपन्यास।
हाँ, द ब्लाइंड असैसिन, जिसके हिस्से आयरिस की डायरी में बिखरे हुए हैं। ऊपर से देखने पर तो एक सस्ती सी साइंस फिक्शन कहानी लगती है।
एक कातिल है जिसकी आंखें सिली हुई हैं।
हाँ, और उसकी प्रेमिका एक गूंगी ऊंचे खानदान की लड़की जिसकी बलि दी जानी तय है। वो छुपकर मिलते हैं और कातिल उसे ज़िक्रॉन नाम के ग्रह की खोई हुई दुनिया की कहानियां सुनाता है, जबकि दोनों अपने दर्दनाक अंत का इंतजार करते हैं।
लेकिन यहाँ इशारे बहुत गहरे हैं।
बहुत। अंधा कातिल सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एलेक्स की तरह है जो अपने मकसद के लिए लड़ रहा है, पर शायद नैतिकता से समझौता भी कर सकता है।
और शायद आयरिस की तरह भी, जो जानबूझकर सच से आंखें मूंद लेती है।
हाँ बिल्कुल। और वो गूंगी बलि चढ़ने वाली लड़की, वो आयरिस और लॉरा दोनों की झलक है, हालात में फंसी हुई अपनी आवाज खो चुकी औरतें।
तो ज़िक्रॉन की कहानी उनके छुपे हुए खतरनाक प्यार का एक कोड बन जाती है।
हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ वो बातें कह सकते हैं जो असली दुनिया में नामुमकिन है।
और कहानी के आखिर में ये तीनों धागे एक साथ आते हैं।
हाँ, और एक ऐसे सच को खोलते हैं जो चौंका देता है। ये वो पल है जब पाठक को सब कुछ नए सिरे से सोचना पड़ता है।
क्या होता है आखिर में?
आखिरी पन्नों में आयरिस राज खोलती है। वो उपन्यास द ब्लाइंड असैसिन लॉरा ने नहीं, उसने लिखा था।
आयरिस ने?
हाँ, ये एलेक्स के साथ उसके प्यार की कहानी थी जिसे उसने साइंस फिक्शन के पर्दे में छुपा दिया था। वो चोरी छिपे मिलना, वो जुनून, आने वाली तबाही का वो एहसास, ये सब उसकी कहानी थी।
तो उसने इसे लॉरा के नाम से क्यों छपवाया?
एलेक्स की याद में और अपने दबे हुए प्यार के इजहार के तौर पर।
तो फिर लॉरा का क्या रोल था? वो सिर्फ एक मासूम शिकार नहीं थी?
नहीं, उसे आयरिस और एलेक्स के रिश्ते के बारे में पता था, और ये भी कि वो रिचर्ड के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसे आयरिस की लिखी हुई कहानी मिल गई थी।
तो उसकी खुदकुशी
एक सोचा समझा फैसला था। उपन्यास की दुख भरी कहानी को सच साबित करने वाले अंदाज में मरकर उसने उस किताब को एक झूठी लेकिन असरदार सच्चाई दे दी,
ताकि किताब छपे और उसका छुपा हुआ सच जिंदा रहे।
हाँ, ये आयरिस के लिए उसका आखिरी भयानक तोहफा था, अपनी बहन को बचाने और ये पक्का करने का तरीका कि उसके इकलौते सच्चे प्यार की कहानी दुनिया तक पहुंचे।
तब जाकर समझ आता है कि आयरिस की पूरी डायरी उस उपन्यास को समझने की चाबी है जिसे बचाने के लिए उसकी बहन ने जान दे दी।
बिल्कुल।
ये खुलासा तो उपन्यास की मुख्य मुद्दों को और गहरा कर देता है, जैसे सच, याददाश्त और कहानी कहने का मसला।
हाँ, ये सबसे अहम है। उपन्यास बार बार पूछता है जिंदगी का सच क्या है, क्या वो जो अखबारों में छपता है या वो जो दिल में महसूस होता है।
आयरिस की कहानी उन ताकतवर मर्दों के लिखे इतिहास को चुनौती देती है जिन्होंने उसकी जिंदगी को कंट्रोल किया।
और उपन्यास द ब्लाइंड असैसिन खुद एक ऐसे सच का बर्तन बन जाता है जिसे सीधे कहना बहुत खतरनाक है। यहाँ कहानी कहना सिर्फ कला नहीं बल्कि जीने की जरूरत है, अपनी पहचान वापस पाने का तरीका।
जैसे आयरिस सोचती है कुछ इस तरह से, कहानी सिर्फ तुम्हारी होती है पर तुम इसे खुद को नहीं सुना सकते, तुम्हें इसे किसी और को सुनाना पड़ता।
सही। और कहानी के अंदर की कहानी दिखाती है कि कैसे एक ही कहानी सच को छुपा भी सकती है और जाहिर भी कर सकती है। ये एलेक्स और आयरिस के रिश्ते का कोड वाला सच बताती है, लेकिन लॉरा के नाम के पीछे छुपकर।
और आयरिस एक अविश्वसनीय कहानीकार भी है, इसलिए नहीं कि वो झूठ बोल रही है, बल्कि
इसलिए कि उसकी यादें गुनाह के एहसास, पछतावे और छुपाए गए राजों से बनी हैं।
दूसरा बड़ा मुद्दा है बहनों का रिश्ता और धोखा, आयरिस और लॉरा।
हाँ, उनके बीच का बंधन बहुत उलझा हुआ है। प्यार है, जलन है, गलतफहमी है और आखिर में एक बहुत गहरी कुर्बानी भी।
आयरिस का दुनियादारी वाला नजरिया लॉरा के आदर्शवाद से टकराता है। शायद आयरिस का सबसे बड़ा धोखा उसकी खामोशी है।
हाँ, लॉरा को रिचर्ड से ना बचा पाना, अपने राज ना बताना, फिर भी लॉरा का आखिरी काम वफादारी की इंतहा बन जाता है।
उनके किरदारों और उनके चुने हुए रास्तों का फर्क साफ दिखता है। उपन्यास दिखाता है कि कैसे हिफाजत और नुकसान, प्यार और गुनाह के एहसास के बीच की लकीरें धुंधली हो सकती हैं।
बिल्कुल, खासकर बहनों के रिश्ते में।
और उपन्यास मर्दों के दबदबे वाले समाज की भी जोरदार आलोचना करता है, औरतों की आजादी और उनके दमन का मुद्दा।
हाँ, कैसे औरतों को चीजों की तरह देखा जाता है, बिजनेस डील में इस्तेमाल होने वाली, वारिस पैदा करने वाली, पतियों की शान बढ़ाने वाली।
पैसे की मोहताजी और समाज की उम्मीदें उनके रास्ते बंद कर देती हैं।
मिसालें भरी पड़ी हैं आयरिस की, जबरदस्ती की शादी, लौरा को पागलखाने भेजना, लेकिन छुपा हुआ विरोध भी है,
जैसे आयरिस का लिखना
और लौरा का समाज के हिसाब से ढलने से इनकार, और उसका आखिरी दुखद फैसला जो उसका अपना था।
प्यार और कुर्बानी का मुद्दा भी अहम है, दो तरह के प्यार का टकराव दिखता है।
हाँ, रिचर्ड ग्रिफिन का हक जताने वाला, लेन देन वाला प्यार जो असल में कब्जा करना है,
बनाम आयरिस और एलेक्स के बीच का छुपा हुआ जोशीला प्यार जो आज़ादी की एक झलक देता है।
हालांकि इस सच्चे प्यार की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और कुर्बानी का पूरा बोझ वो लौरा के किरदार में समाया हुआ है।
एक जगह शायद कुछ ऐसा कहा गया है, खुशी कांच से घिरा एक बाग है, कांच हमेशा टूटता रहता है।
ये आयरिस और एलेक्स के रिश्ते की नाजुक और आखिरकार टूटने वाली फितरत को कितनी खूबसूरती से बयान करता है।
आखिर में समाज के अलग अलग तबके और उनकी सोच का मुद्दा भी कहानी में गहराई से बुना हुआ है।
हाँ, कहानी अपने वक्त के माहौल में जड़े जमाए हुए हैं। ये पुराने अमीर खानदान चेस, नए बेरहम पूंजीवाद रिचर्ड और उभरते समाजवादी आंदोलन एलेक्स के बीच टकराव को दिखाती है।
चेस परिवार की बटन फैक्ट्री का बंद होना एक युग के खत्म होने का इशारा है,
और रिचर्ड के बिजनेस करने के शिकारी तरीके उस दौर के उद्योग की शोषण करने वाली प्रकृति को दिखाते हैं।
एलेक्स की क्रांतिकारी सोच इस व्यवस्था पर सवाल उठाती है।
हाँ, इस तरह एक निजी प्रेम कहानी 20वीं सदी को शक्ल देने वाली बड़ी सियासी और समाजी लड़ाइयों का छोटा सा आईना बन जाती है, जहाँ इंसान की किस्मत समाज और सियासत की ताकतों से जुड़ी होती है।
अगर हम कहानी कहने के अंदाज की बात करें तो सबसे खास है इसकी जटिल बनावट। कहानी के अंदर कहानी, उसके अंदर एक और कहानी।
हाँ, वो रूसी गुड़िया जैसी संरचना। आयरिस की डायरी, जिसमें लौरा के नाम वाला उपन्यास है, जिसमें ज़िक्रॉन ग्रह की साइंस फिक्शन कहानियाँ हैं।
ये हकीकत और कल्पना की अलग अलग परतों के बीच एक पेचीदा खेल रचता है,
और पाठक को भी पहेली सुलझाने में शामिल कर लेता है। कहानी का आगे पीछे होना भी रहस्य और तनाव बनाए रखता है।
और आयरिस का मैं कहकर कहानी सुनाना वो उसे एक अविश्वसनीय कहानीकार बनाता है।
हाँ, वो जानबूझकर झूठ नहीं बोलती, पर उसका नजरिया गुनाह के एहसास, पछतावे और राजों से रंगा हुआ है।
उपन्यास इशारों से भी भरा है, प्रतीक जैसे वो पुल।
जहाँ लौरा की मौत होती है, वो वापसी के रास्ते बंद होने, जिंदगी और मौत के बीच जाने हुए झूठ और छुपे हुए सच के बीच का प्रतीक है।
और बटन चेज फैक्ट्री के।
हाँ, वो छोटी मामूली चीजें जो समाज और कहानी के धागों को जोड़े रखती हैं, उनका बंद होना परिवार के बिखराव का निशान है।
और शीर्षक अंधा कातिल खुद कई मतलब रखता है।
बिल्कुल, ये एलेक्स जो नैतिक रूप से अंधा हो सकता है, आयरिस जो जानबूझकर अंधी बनती है, और शायद प्यार की फितरत प्यार अंधा होता है की तरफ भी इशारा करता है।
कहानी में पहले से होने वाले हादसों के संकेत और तंज भी भरे पड़े हैं, खासकर ये दुखद बात कि लौरा उस उपन्यास के लिए मशहूर होती है जो उसने लिखा ही नहीं।
सही कहा, इस उपन्यास को पढ़ना जज्बाती तौर पर एक गहरा अनुभव है। शुरू में रहस्य और उत्सुकता होती है,
फिर जैसे जैसे आयरिस की कहानी खुलती है घुटन और नाइंसाफी का एहसास बढ़ता है।
हाँ, एलेक्स के साथ छुपा हुआ प्यार कहानी में कुछ सांस लेने वाले जोशीले पल लाता है, जो आयरिस की ठंडी दिखावे की जिंदगी से बिल्कुल अलग है।
और फिर आता है वो आखिरी खुलासा जो दिल को हिला देता है।
हाँ, ये पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। कहानी एक बेबस शिकार की कहानी से निकलकर एक इरादे वाली, भले ही दुखद लेकिन अपनी मर्जी से काम करने वाली औरत की कहानी बन जाती है।
पाठक आयरिस के जिंदगी भर के गुनाह के बोझ और लौरा की कुर्बानी की भयावहता को महसूस करता है।
पढ़ने के बाद एक उदासी और अफसोस का एहसास देर तक रहता है।
ये उपन्यास पाठक के मन में कई सवाल छोड़ जाता है,
जैसे
खामोशी की कीमत क्या होती है, हम अपनी कहानियों में कौन सी सच्चाई दफन कर देते हैं, क्या जिंदगी भर के पछतावे का हिसाब सच बोलने के एक आखिरी काम से चुकाया जा सकता है।
ये इतिहास को देखने का नजरिया भी बदलता है कि सरकारी रिकॉर्ड अक्सर एक चुना हुआ, गढ़ा हुआ सच होता है,
और ये नैतिकता की एक ज्यादा उलझी हुई समझ देता है, जहाँ किरदार अच्छे या बुरे नहीं बल्कि एक बेरहम दुनिया में नामुमकिन फैसले करने वाले कमजोर इंसान हैं।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास अक्सर जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन सच दबी हुई आवाजों में जिंदा रहता है।
और ये भी कि प्यार और कुर्बानी कितने पेचीदा तरीके से जुड़े हो सकते हैं, कभी कभी तबाही लाने वाले तरीकों से। तो सोचने वाली बात यह है क्या अपनी कहानी कहने का हक पाने के लिए किसी और के सच को या किसी और की जिंदगी को दाव पर लगाना कभी सही हो सकता है?
गहरा सवाल है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।